प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रील भगवत्पाद गौरानीताय 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 जय गौरानीता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ 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 ಗತಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಗತಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ 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 ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಜಯ ಜಯ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಬರೀ ಥಾಪಡ್ ದಿದೆ ಬರೀ ಥಾಪಡ್ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಜಯ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಜಯ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಜಯ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋ गोपाल जय गिरधारी गोपाल जय जय गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल जय जय गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल 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 गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल जय जय गिरधारी गोपाल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव
जय जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका श्री श्री गिरधारी जी की जय नित्रिला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोतर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरि नाम संकीर्तन की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे निताय गौर हरि प्रेमानंदे निताय गौर हरि प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू जय गुरु जय गौरांग जय शिल प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद एकादश अध्याय श्लोक संख्या पंचम पांच
न न
ते तत्पुक्तम् जग्रिहु न घटे इति तस्य तत् बालस्य उत्पाटनम् तरवो केचि संदिग्धचेतसः न ते तद् उक्तं जगृहुर्न न ते तद् उक्तं जगृहुर्न घटेतेति तस्य त घटेतेति तस्य त बालस्योत्पाटनं तरवो बालस्योत्पाटनं तरवो केचित् संदिग्धचेतसः केचित् संदिग्धचेतसः न ते तद् उक्तं जगृहुर्न घटेतेति तस्य त बालस्योत्पाटनं तरवो केचित् संदिग्धचेतसः सारे गोप तत् उक्तम बालों बालकों द्वारा कहे गए जगृह स्वीकार करेंगे न घटे ऐसा नहीं हो सकता इति इस प्रकार तस्य कृष्ण का तत् काम बालस्य कृष्ण जैसे बालक का उत्पाटनम जड़ समेत उखाड़ना सर्वो दोनों वृक्षों का केचि किसी ने संदिग्ध चेतसा क्या किया जा सकता है इसके विषय में सशंकित क्योंकि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक नारायण के समान होगा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की। श्री श्री राधा गिरधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। एक तरफ सुंदर गिरधारी के दर्शन और एक तरफ बाल मुकुंद की सुंदर कथाएं, डबल आनंद। अनुवाद। तीव्र पितृ स्नेह के कारण नंद इत्यादि ग्वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कृष्ण ने इतने आश्चर्यमय ढंग से वृक्षों को उखाड़ा है, अतएव उन्हें बच्चों के कहने पर विश्वास नहीं हुआ। किंतु उनमें से कुछ को संदेह था, वे सोच रहे थे चूंकि कृष्ण के लिए भविष्यवाणी की गई है कि वह नारायण के तुल्य हैं, अतएव हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। तात्पर्य, एक विचार यह था कि वृक्षों को गिराने जैसा कार्य एक ऐसे छोटे बालक के लिए असंभव था, किंतु कुचेक को संदेह था कि कृष्ण को नारायण के तुल्य बतलाया जा चुका है, अतएव ग्वाले दुविधा में थे। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रसंग है ठाकुर जी की दामोदर लीला के विषय में, कि एक दधि भांड फोड़ने की सजा में कन्हैया को माँ यशोदा ने रस्सी से बांध दिया उखल के साथ, और बाल कन्हैया भी बाल हट पर उतर आए। देखिए, संसार में चार प्रकार की हठ जो होती है ना, उसे पूरा करना ही पड़ता है। एक होता है स्त्री हठ, अब सब गृहस्थी को मालूम है, पूरा करना ही पड़ता है। घर में रहना है तो, मंदिर में आना है तो कोई बात नहीं, मुंडन करा के शर्ट पेंट उतार के यदि मंदिर में आ जाना है तो कोई बात नहीं, आप स्त्री हठ पूरा नहीं करोगे चलेगा। वो लोग भी भगा देंगे, मंदिर वाले भी बोले पहले पूरा करो बाद में आओ, क्या कहेंगे, यहां लफड़ा नहीं चाहिए यहां लफड़ा नहीं चाहिए, शांति से हमें रहने दो, ये ब्रह्मचारी बिचारे सब त्याग के हैं। तो स्त्रीहट जो है पूरा करना पड़ता है। एक होता है योग हट, यदि साधु किसी हट पर उतर आए तो उसे पूरा करना ही पड़ता है, वो चाहे बड़े बड़े राजा महाराजा ही क्यों ना हो। ये हर एक की एक एक अलग अलग कथाएं हैं, पर यहां वो विषय नहीं है। योग हट, तो यदि साधु यदि योगी यदि हट पर उतर आए तो उसे पूरा करना ही पड़ता है। तीसरा होता है राज हट, यदि राजा हट ही हो जाए, राजा हट पे उतर आए तो पूरा करना ही पड़ता है। अभी देखिए, कुछ महीने पीछे, एक डेढ़ वर्ष या कुछ महीने पीछे महाराष्ट्र में सभी व्यापारियों ने विरोध किया एलबीटी का, है ना, एलबीटी वेट टैक्स सबका विरोध किया, और सभी व्यापारियों ने डेढ़ पौने दो महीना हड़ताल चलाई, सारी बाजारें बंद थी। पर पृथ्वीराज चव्हाण माने सीएम मुख्यमंत्री, वो भी हट पे उतर आए, बोले नहीं करूंगा राज हट। व्यापारियों को झुकना ही पड़ा, कितने दिन नुकसान कर सकते हैं, डेढ़ पौने दो, कितना महीना चला था प्रभु जी, कितना महीना चला था हड़ताल, नहीं एक से ज्यादा, डेढ़ पौने दो महीने हड़ताल चली, सभी बाजार बंद थी। ये व्यापारी हट पे आ गए और राजा भी हट पे आ गया, मुख्यमंत्री भी, लेकिन आखिर में मुंबई का सारा कारोबार जो है ठप हो गया, महाराष्ट्र का, सबको झुकना ही पड़ा, राज हट, नहीं नहीं चलो। ऐसे ही एक चौथा होता है बाल हट। बाल हट जो है ये पूरा करना ही पड़ता है, अगर बाल हट पे उतर आए बालक तो पूरा करना ही पड़ता है। एक बार एक राजा का राजकुमार बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। तो सभी खिलौने दिए, मिठाई दिया, बहुत सारे उपाय किए, भाई चुप हो जा, चुप हो जा, वो चुप नहीं हुआ। वैद्य हकीम को बुलाया गया, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। फिर आखिर में राजा को बुलाया, रानी को बुलाया, सारे दास दासियां परेशान हो गए, बोले भाई इसको शांत करिए। जब रानी ने अपनी गोद में लेके उसके सर को, पीठ को सहला के पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो बोले वो जो आंगन में हाथी खड़ा है वो चाहिए, आंगन में जो हाथी खड़ा है वो चाहिए। राजा बोले इतनी सी बात तुम लोग पूछ नहीं सकते हो, बेवकूफ हो, हाथी चाहिए, मेरे यहां हाथियों की कमी है, लाओ हाथी। बोले नहीं, वो हाथी हाथी लाया, बोले बस खुश। तो फिर रोने लगा, बोले नहीं, बोले ये जो हाथी इसको घड़े में डालो तो ही मैं शांत होऊंगा। और वो रो ही जा रहा है, बोले हाथी लाओ, हाथी को घड़े में डालो तो ही मैं चुप रहूंगा, अभी क्या करें, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन राजा के पास प्रधान होशियार होना चाहिए और सेठ के पास मुनिम होशियार होना चाहिए। यदि राजा के पास प्रधान होशियार नहीं है और सेठ के पास यदि मुनिम मैनेजर होशियार नहीं है तो कंपनी डूब जाएगी तुरंत। चलिए पॉइंट लिखिए, MBA बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है ना, 15-15, 20-20 लाख रुपया देके सीखने जाते हैं, साधारण पंडित को मालूम होता है ये बात। तो वो राजा का प्रधान बड़ा होशियार था, उसने क्या किया, एक चित्रकार को बुलाया और बड़ा सुंदर हाथी का चित्र बनवाया, बहुत ही आकर्षक। और फिर राजकुमार को बोला, बोले कौन सा हाथी चाहिए, वो या ये? तो बालक का स्वभाव होता है हमेशा नई नई चीज चाहिए, वो तो रोज देखता था, बोले ये चाहिए। फिर प्रधान ने पूछा, घड़े में किसको डालो, उसको या इसको, बोल अभी, बोल अभी डालता हूं। तो बोले इसको डाल, कागज वाले को, घड़ी किया कागज की, डाल दिया घड़े में, शांत हो गया, सब खुश हो गए, ताली बजा दी। तो ऐसे ये जो बाल कन्हैया है, अब बांध दिया तो उनको और गुस्सा आया, हट पे उतर आया। और हट पे उतरने के बाद वो रेंगते हुए, उखल के साथ रेंगते हुए घर के आंगन में, घर के बाहर आंगन में चले गए और वहां पर दो प्राचीन वृक्ष खड़े थे, बहुत प्राचीन। सारे ब्रजवासियों में कहावत थी कि ब्रज के सबसे प्राचीन वृक्ष यही है, क्योंकि ब्रजवासी अक्सर कहते थे कि भाई हमारे दादा परदादा और पूर्वोत्तर परदादा ने भी यही कहा था कि ये ब्रज के सबसे पुराने वृक्ष हैं। क्यों सबसे पुराने वृक्ष हैं? क्योंकि आप सबने अभी तक कथाओं में सुनते आए कि नल कुबेर और मणिग्रीव को नारद जी का श्राप था और उसी के कारण वो ब्रज में खड़े थे, क्योंकि नारद जी ने उद्धार का उपाय यही बताया था कि भाई आप जाकर के ब्रज में तपस्या कीजिए, कृष्ण आएंगे, प्रभु आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। तो कन्हैया दिखा ऐसे रहे हैं कि वो बालहट में आकर रोष में आ गए, क्रोध में आ गए और वो आंगन में गए और चलते गए और उखल ऐसे टेढ़ा हो गया, गिर गया जमीन पर और वो भी उखल पीछे भी रेंग रहा है। और कन्हैया ने देखा कि अभी उनको जाने में बाधा पड़ गई, उखल फंस गया दो वृक्ष के बीच में। अब भगवान ही जाने, कन्हैया ही जाने वो उखल कितना लंबा होगा। अब इतना सा एक बालक है, एक इतना सा बालक है, उसको उखल के साथ बांधते, हम लोग यहां देखते भी है दामोदर मास में, कन्हैया का सिर खत्म हो जाता है उखल के पास। यदि एक 1.5-2 वर्ष के बालक को बांधे, वो उखल कितना होता है धान कूटने वाला, करीब करीब 2-2.5 फीट। अब दो विशाल वृक्ष हैं, उसमें 2-2.5 फुट नजदीकी कैसे हो सकती है? तो कैसे फंस गया, तो उखल निकल जाना चाहिए था। उखल जो है दो भारी वृक्ष हैं, तो अक्सर यह देखा जाता है कि दो भारी वृक्ष कभी सटके नहीं होता एकदम, कि जिसके बीच में 2-2.5 फीट का गैप ना हो। अब कभी भी देखिए, कहीं पर भी वन उपवन वाटिकाओं में कहीं भी देखिए, यदि दो बड़े भारी वृक्ष हैं तो सहज ही 5-7-10 फीट का अंतर होता है। तो ये 2-2.5 फीट का उखल कैसे फंस गया, एक्सटेंशन हो गया, लंबा हो गया, हो सकता है? अगर 9 लाख गाय वाले नंद भवन की सारी रस्सियां कम पड़ गई, वो छोटी पड़ गई, अड़ोस पड़ोस की सारी रस्सियां छोटी पड़ गई तो उखल लंबा होने में क्या बात है। हो सकता है उखल लंबा हो गया। मैं सोचता हूँ कई बार ये उखल कैसे, जब उखल देखा इतना सा उखल है और कहें कि बहुत प्राचीन वृक्ष है। और वृक्षों का एक नियम है, जितना पुराना वृक्ष होता है उतना चौड़ा होता है, ऊंचा होता है, शाखा विशाखा प्रशाखाएं सारी बहुत फैली हुई होती है। नवद्वीप में एक वट वृक्ष है, आप लोग ने कई सभी ने दर्शन किए होंगे, शिव जी के मंदिर के बिल्कुल लगा हुआ, और वो वट वृक्ष ने सारी दीवारें आदि तोड़ दी हैं, पर मंदिर कभी गिरता नहीं है या वट वृक्ष कभी गिरता नहीं है। वो वट वृक्ष कितने दूर तक फैला है, कहां से शुरू हुआ कहां अंत है किसी को पता नहीं, 1.5 किलोमीटर से भी उसकी शाखाएं लंबी है वट वृक्ष की, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो कहां उसकी शुरुआत है कहां अंत है कोई नहीं जानता, अब नवद्वीपवासी। तो वो वृक्ष जो है कम से कम 1,000-1,500-2,000 साल पहले, महाप्रभु के समय के पहले का होगा। तो ये तो लाखों वर्ष प्राचीन वृक्ष हैं, तो ये वृक्ष गैप कैसे नहीं होगा। पर ये तो कन्हैया की इच्छा थी, उखल फंस गया और थोड़ा सा ऐसे बल किया, थोड़ा सा ऐसा, ये नहीं कि आपके वो क्या बोलते हैं WWF में ऐसे करके पहलवान लोग वजन उठाते बहुत बल करके और 2 सेकंड में फेंक देते, ओलंपिक में बहुत बल करके ऐसे ऐसे, जो वेट लिफ्टर होते हैं ऐसे बहुत बलवान लोग आते हैं ऐसे और बहुत ऐसे वजन उठाते हैं तो 200 पाउंड में तो ऐसे ऐसे पूरे हिल जाते हैं। जबकि कन्हैया ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत बड़े हंसते खेलते ऐसे उठाया। और भागवतम में वर्णन है कि जब सुंदर सुंदर गोपिकाओं के जब स्तन प्रदेश और कटिकाओं को देखा उन्होंने तो कन्हैया विह्वल हो गया और उसकी आंखें ऐसे ऐसे होने लगी, कन्हैया विचलित हो गया। और ब्रजवासी जो है कन्हैया को एक टक देख रहे, अपलक पलक भी नहीं झपकाते हैं, कन्हैया के अधरामृत का, कन्हैया के मुखारविंद का रसपान कर रहे हैं सारे ब्रजवासी अपलक। हरि बोल। तो ये कृष्ण ने कन्हैया ने क्या किया, ऐसे गए उखल फंसाया और ऐसे चल दिए, बस जैसे चल रहे थे थोड़ा ऐसे बल किया और धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर गए बड़े धमाके के साथ। किसी ने कभी वृक्ष गिरने का आवाज सुना है या देखा है, किसी ने देखा होगा तो पता है उनको कितना धमाके के साथ वृक्ष उखड़ के गिरता है। और वो भी हरा भरा पेड़, यानी कि सूखा था, सूखा पेड़ गिरे तो भी बहुत आवाज आता है, लेकिन हरा भरा पेड़ जो है जिसमें कोई रोग नहीं है, किसी ने काटा नहीं और ऐसे अपने आप उखड़ जाए, ये एक अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो कन्हैया ने थोड़ा सा बल किया और उखड़ गया, दोनों वृक्ष गिर गए। तो ये दोनों वृक्ष जो उखड़ गए उसकी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हम लोग सुनते आए। तो आज का विषय क्या है, आज का विषय यह है कि नंद बाबा आदि जो उनके सम उम्र के जो अन्य गोप थे उनमें यह विस्मय था, आश्चर्य था, असमंजस था कि कन्हैया के बल से ही वृक्ष गिरा या कोई और कारण है। बालक कह रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से, जो ग्वाल बाल कन्हैया की उम्र के ही थे, जो अभी गैया चराने नहीं गए थे, ठाकुर जी ने अभी तक गैया नहीं चराना शुरू की, 1-1.5 वर्ष के रहे होंगे बस। कृष्ण ने गैया चराना शुरू किया था कब, किस दिन चराना शुरू किया था गैया, बछड़े, सॉरी क्षमा करें, पहले बछड़े चराना शुरू किया कृष्ण ने, पहले गाय चराने नहीं गए, पहले बछड़े। किस दिन से शुरू किया, गोपाष्टमी। किस दिन आती है गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा से 8वें दिन, क्योंकि कृष्ण ने उस दिन पहली बार गैया बछड़े चराने गए, इसलिए वो दिन विख्यात हो गया गोपाष्टमी। लेकिन अभी और उस समय कितने वर्ष के थे, करीब करीब 4-4.5 वर्ष के, तो इसलिए कालिया दमन गोवर्धन पूजा रासलीला सब बाद में हुआ, क्योंकि खेलन को गए तो खेलन को गए, गैया चरायन को गए, कन्हैया जब ब्रज में तब है तो सारी लीला संपन्न भाई भैया है ना, तो इसलिए तो अभी ये 1-1.5 वर्ष के बालक ने, ये सब ग्वाल बाल जो उनकी उम्र के थे, जो थोड़े बड़े हुए थे, जो बोलना सीख गए थे अच्छी तरह से, जो चलना फिरना दौड़ना सीख गए थे, तो नंद भवन में आंगन में खेलन को आवे रोज, सारे ग्वाल बाल सारे गोपियन के ग्वाल रोज खेलन को आवे, कन्हैया के साथ लल्ला के साथ रोज खेलन को आवे, तो जो उन सारे ग्वालन ने देखियो, उन सारे ग्वालन ने नंद बाबा से कहो कि बाबा एक कन्हैया ने वृक्ष धराशाई कर दियो, बाबा ये कन्हैया ने वृक्ष को पेड़ को गिरा दियो बाबा। तो सभी सोच रही हैं छोटे से कन्हैया ने ये कैसे गिरा दिया इसको। तो कुछ ग्वाल बाल सोच रहे हैं, हां उनको याद आया नामकरण हो गया था, तो नामकरण हो गया था तो याद आया, हां उस समय गर्ग मुनि आए थे मथुरा से, वसुदेव जी ने भेजा था और एक गौशाला में बोले किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि शायद देवकी की आठवीं संतान ये है या और कोई है या कुछ और है। बोले कंस ने वैसे ही उपद्रव शुरू कर दिया था, है ना, क्योंकि कन्हैया के छठी के दिन ही, जो छठी थी तो उसी दिन किसको किसका वध किया था कन्हैया ने, पूतना का वध छठी के दिन। बैलगाड़ी किस दिन उड़ाया, शकटासुर किस दिन उड़ाया, बैलगाड़ी छठी का उत्सव था ना, नहीं कौन सा उत्सव था उस दिन, शकटासुर का जब वध किया तब कौन सा उत्सव था व्रज में, हाँ नहीं, अन्नप्राशन एक वर्ष में नहीं होता है, अन्नप्राशन छह से आठ महीने में होता है जब पहली बार बाहर का कुछ दिया जाता है। पूतना तो करीब करीब दो महीना हो गया था। आप दशम स्कंद पढ़िए फिर से, कितने दिन हुए थे पूतना वध, छह दिन में पक्का, चलो मैं अपनी गलती मान लेता, पूतना वध कितने दिन में हुआ, छठी के दिन, छठी का दूध करेक्ट, चलो मैं अपनी गलती मान लेता हूं। तो छठी के दिन पूतना वध और शकटासुर का 100 दिन में। तो ऐसे कुछ कुछ असुर तो आते ही थे, तो ये कैसे माने, तो किसी को याद है, हां नामकरण जब किया था, क्योंकि नामकरण एक वर्ष के अंदर किया जाता है, 30 दिन से लेकर कोई कोई में रिवाज होता है एक महीने में, कोई कोई में ऐसे होता है कि गर्भवती स्त्री 40 दिन का स्नान कर लें, जब पूरा सूतक उतार लें सर से बाल से नहा लें तब बाद में बालक का नामकरण करते हैं कोई शुभ मुहूर्त देखकर, या फिर एक वर्ष पर्यंत, एक वर्ष में नाम। तो एक वर्ष के ऊपर तो हो गए, ये प्रमाण हो गया कि कन्हैया का नाम है कृष्ण बलराम, गौशाला में नामकरण हो गया। तो कोई हां वो गर्ग मुनि ने कहा था, अब गर्ग मुनि कैसे कहें कि ये जो कन्हैया, ये परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, यही जगत पिता है, यही जगत के उत्पत्ति करता, यही पालन करता है, कैसे कहें। तो उन्होंने कहा ये बालक नारायण के तुल्य शक्तिमान होगा और अद्भुत कार्य करेगा संसार में। तो इस प्रकार से कुछ सोच रहे हैं, कुछ नंद बाबा के उम्र के या उनसे छोटे बड़े जो पिता तुल्य थे, जो पिता बन चुके हैं, कि हो सकता है कि ये भी कर सकते हैं। तो हम यहां पर इस प्रसंग से ठाकुर जी के कितने गुणों का दर्शन कर सकते हैं, प्रयास करें। एक नाम है कृष्ण का योगेश्वर, कृष्ण का एक नाम है योगेश्वर। तो जो योगियों में भी जो ईश्वर हैं और उन योगियों के ईश्वरों में भी जो परमेश्वर हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एक भौतिक उदाहरण देता हूं कुछ, कि जो कुछ हिमालय या हरिद्वार या कहीं भी जो वन उपवनों में जो ऊर्ध्ववासी ऋषि होते हैं, जो ऊंचे पर्वत पर रहकर योग अभ्यास करते हैं, तो वे कुछ सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कैसी सिद्धियां, कि वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, उनमें कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, अणिमा लघिमा प्रतिमा ऐसे। तो वे उन सिद्धियों के द्वारा अपने स्थान में बैठकर कश्मीर के बगीचे का सेब ला सकते हैं, अपने हाथ को इतना लंबा कर देते हैं कि वो सेब ला सकते हैं, टिकट निकालें। खैर भारत में साधु लोग ट्रेन में टिकट नहीं निकालते हैं, ऐसे ही घूमते हैं नंग धड़ंग। कोई टीटी पुलिस वाले का हिम्मत नहीं साधु को टिकट पूछे, हरे कृष्ण के साधु को छोड़ के, क्योंकि वो एकदम टकाटक होके जाते हैं ना, नीट एंड क्लीन। तो जो जटा दाढ़ी नंग धड़ंग त्रिशूल डमरू चिमटा हाथ में लेके घूमते हैं उसको कोई नहीं पूछता, बोले जेल जाएगा वहां फोकट का बैठ के खाएगा। कितने भरे हजारों लाखों हैं, कोई संख्या नहीं है इनकी, किसी ने गिनती नहीं की, तो उनका कोई टिकट नहीं, वो घूमते ऐसे। लेकिन जो वास्तव में योगी हैं उनका कोई टिकट, वो प्रयास नहीं करते हैं कि उठें ट्रेन में जाए वहां बगीचे तक जाए और फिर सेब तोड़े या किसी से मांगे, ऐसे नहीं। वो गए बस मन की इच्छा की ले लिया, पानी में चलने लगे, हवा में बैठने लगे, हाँ हवा में ऊपर उड़ जाते हैं, या अपने आप को विशाल पर्वत से भारी कर लेते हैं। हमने बचपन में खेल देखे, कुछ लोग ऐसे मदारी लोग खेल करते थे, बोले पेट पे रस्सी बांध दो और इस तरफ 20-25-50, इस तरफ 20-25-50 खींचते उसको, पर कोई हिला नहीं पाते उनको, तो ऐसे पर्वत के समान भारी कर देते हैं, या फूल से अधिक हल्के कर देते हैं अपने आप को। ये कई सिद्धियां होती हैं, लेकिन इन सिद्धियों के परे समाधि अवस्था आती है, और समाधि से भी परे जो सिद्धियां हैं वो जीव प्राप्त नहीं कर सकता। आप लोगों ने शायद गोरखनाथ या मच्छिंद्र नाथ की यदि कभी कहानी सुनी होगी, तो बाद में वो कामरू प्रदेश में होते हैं तो मृदंग में ऐसी आवाज बजाते हैं, चेत मच्छिंद्र गोरख आया, चेत मच्छिंद्र गोरख आया, उनका शिष्य, क्योंकि वो कामरू देश में वो लिप्त हो जाते हैं, तो उनके गुरु ऐसे आश्रम में समाधि में होते हैं, वो कमरा बंद होता है और वहां पर वो राजा के रूप में, वो कामरू देश में जहां केवल स्त्री राज्य है वहां पर वो रहे होते। वो सिद्धियां हैं, एक से दो शरीर, चार शरीर, दस शरीर बनाना, और वो समाधि में ही है। उससे भी वो अधिक से अधिक जीव की जो परिस्थिति है, जीव की जो क्षमता है, जीव की, वो उतना ही कर सकता है। एक से दो चार शरीर, भागवत में बताया गया है कि जीव का सबसे ज्यादा चार, आठ, बारह, उससे ज्यादा नहीं, और उससे भी कोई सिद्ध महात्मा है 50 से अधिक अपने आप का एक्सपांशन नहीं कर सकता, अपने आप का 50 से विस्तार ज्यादा नहीं कर सकता। जबकि श्री कृष्ण ने द्वारिका में 16108 रानी महारानियां, रानियां महारानियां और पटरानियां, बहुवचन है, रानियां 16000, महारानियां 100 और पटरानियां 8। तो रानियां महारानियां और पटरानियों के लिए कृष्ण ने 16108 और अपने आप का 16108 विस्तार किया। हर एक रानी के महल में कृष्ण उपस्थित हैं और सभी रानी और उनके साथ उनके बच्चों को ऐसे ही प्रतीत होता है कि कृष्ण केवल हमारे साथ। और यही बात देखकर महायोगियों के योगी देवर्षि नारद मुनि देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो जानते थे कि 50 से अधिक तो हो नहीं सकता है, यही पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो इस प्रकार से ये जो 50 में अपने आप को विस्तार कर सकते हैं, यहां तक जीव की क्षमता पूरी हो जाती है। परंतु ऐसी अवस्था में जो योगी होते हैं वो कई इच्छाएं, पहले तो ये योगियों की भौतिक इच्छाओं को पूरा नियंत्रित कर लेते हैं, और तिस पर भी यदि लोक कल्याण हेतु या स्वयं की निज इच्छा पूर्ति हेतु भी यदि योगी चाहें तो बहुत सारी इच्छाएं उनकी मन के संकल्प से ही पूरी हो जाती है, या फिर प्रकृति ऐसे माहौल बनाती है कि वो सारी चीजें उनको अपने आप आती हैं। इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं ना, हमारे बाबा हिमालय की गुफा में रहते हैं हमारे गुरु, कोई इच्छा नहीं है, कोई किसी से मांगती ही नहीं है, सब अपने आप हो जाता है। ये सत्य है, ये अपने आप हो जाता है। यदि आप में से किसी ने भी अगर मार्शल आर्ट, कुछ जुड़ो, कराटे भी, या चाइनीज कुंफू अगर सीखे होंगे या उस विषय में जानते होंगे, तो उसमें क्या होता है, चाइनीज कुंफू में रेड बेल्ट और कराटे वगैरह में ब्लैक बेल्ट, तो कोई एक बेल्ट, दो बेल्ट, तीन बेल्ट, चार बेल्ट, पांच, छह, सात, लास्ट 10 होता है, 10 नंबर। तो हमने देखे अपने जीवन में जो 6-7 स्तर के गुरु होते हैं ना, जो जिनके पास 6 नंबर का 6 ब्लैक बेल्ट या रेड बेल्ट होता है, वो अपने ध्यान में ही बैठते हैं ऐसे, और पीछे से कोई उनको ऐसे छुरा या तलवार लेके वार करते हैं तो केवल खाली ऐसे एक ही वार करते हैं, वो उसके साथ ही उसकी हड्डियां सब टूट जाती है, वो गिर जाता है कहीं दूर जाके। पर डेमोन्स्ट्रेशन, जो प्रदर्शन करते हैं, तो वो उनके ही साथ ही होते हैं, तो उनको उतना तेज वार नहीं करते कि उनकी हड्डियां टूट जाए, गिर जाए, वो 5-7-10 फुट दूर पीछे गिर जाता है अपने हथियार के साथ। या जलंधर में एक सरदार जी ऐसा है जिसने लंदन में शो किया था, ये सारे योग की बातें हैं, फिर ठाकुर जी की बातें, वो अपना तलवार इतनी तेज चला सकता है कि आप गोली छोड़िए आप उसको गोली नहीं लगेगी। शिवाजी महाराज भी ऐसे चला सकते थे तलवार इतनी तेज गति से। ये सिद्धियां हैं योग की। तो इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं जो मन से पूरी होती हैं, उनके पास माहौल ऐसे बन जाता है, उनके अंदर सिद्धियां और शक्तियां इस प्रकार से अंदर आवेशित हो जाती हैं कि वो मन की इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कभी हम सोच सकते हैं कि रावण दशानन है ना, थोड़ी सी राम कथा भी हो जाए, परसों ही है रामायण रामनवमी। तो जो दशानन है वो शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 मस्तिष्क के ऊपर हिमालय उठाता है, जिसके ऊपर शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदी आदि सब कोई है, और मृदंग बजा के शिव तांडव स्तोत्र गा रहा है। कैसे आई ये शक्ति? शारीरिक बल कितना हो सकता है? अंगद जो है, जो राम सेना का जो प्रधानमंत्री हैं, अंगद की अगुवाई में गए थे हनुमान आदि सारे रावण से युद्ध करने के लिए, सुग्रीव ने भेजा था। अंगद जो है उसका कद केवल 3.5 फुट का है, परंतु वो इतना बलशाली है कि वो बड़े बड़े पर्वतों को उठा के चूर चूर कर सकता है। तो ये सारे योग बल हैं, ये शारीरिक बल नहीं है, ये योग बल है इनमें कि इनका शरीर इतना बलवान है। अब रामायण में भी देखिए अंगद को छोटा बताया गया, यदि किसी ने ठीक तरह से शास्त्रों के अनुसार रामायण बनाई है, अंगद छोटा है। ये नहीं कि अंगद हनुमान जैसा विशाल बन सकता है। हनुमान जी के पास ऐसे योग था कि वो अपने आप को 100 योजन लंबा चौड़ा कर सकते थे। एक योजन कितना होता है? एक योजन 80 माइल। गलत जवाब है, एक योजन कहां पड़ा 80 माइल? कहां? फिर से पढ़िएगा। एक योजन अर्थात 12 माइल होता है, और एक माइल का अर्थ होता है 1.625 किलोमीटर। तो ऐसे हनुमान जी 100 योजन अपने आप को लंबा चौड़ा कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी ही केवल ऐसे थे राम सेना में जो 100 योजन समुद्र को लांग सकते थे। तो जो 100 योजन समुद्र को लांग सकते हैं, तो जो 100 योजन लंबा हो सकते हैं, उनके लिए क्या है 100 योजन समुद्र? जय श्री राम, बस एक कदम ऐसे उठाया समुद्र पर। पर हम लोग रामायण में पढ़ते हैं कि हनुमान जी उड़े, फिर मैनाक पर्वत आया, फिर वो राक्षसी क्या नाम था उसका, सिंह का सूरसा राक्षसी आई, वो मगरमच्छ का रूप लेकर उसके साथ युद्ध किया, उसके पेट में से बाहर आए सूक्ष्म बन के, वो भी एक योग है। अणिमा सूक्ष्म बन के बाहर आ गए। तो ऐसे सब, तो बोले ये सब समय कहां गया? एक कदम उठाया वहां पर। तो आर्ष रामायण वाल्मीकि रचयित, जो वैसे 48 प्रकार की रामायण अधिकृत मानी गई हैं, उन 48 प्रकार की रामायणों में से 5 प्रकार की रामायण तो स्वयं वाल्मीकि जी ने लिखी है, आर्ष रामायण वशिष्ठ मुनि ने। तो आर्ष रामायण, वशिष्ठ रामायण, आनंद रामायण, ऐसे करके। तो अलग अलग रामायण में प्रभु श्री राम के चरित्र को, आर्ष रामायण जो वाल्मीकि रची 24,000 श्लोकों वाली, उसमें प्रभु राम को एक साधारण व्यक्ति बताया गया, और किसी किसी स्थान पे परमेश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कई जगह पर आते हैं। पर सारा चरित्र कैसे आलेखित किया गया? एक साधारण मनुष्य जग की तरह। तो ये सब योग सिद्धियों के दर्शन हैं। तो ठाकुर जी को यहां पर उन्होंने क्या किया, एक परम योगी का प्रदर्शन किया। एक गए और थोड़ा सा हल्का सा झटका दिया, वृक्ष गिर गया, है कि नहीं? दूसरी बात कि देखिए, श्री कृष्ण को, भगवान को कभी भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। भगवान को भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। भगवान भगवान ही होते हैं, भगवान भगवान थे, भगवान भगवान हैं, और भगवान भगवान ही रहेंगे, उनको कुछ करना नहीं पड़ता। हमारे भारतवर्ष में दो धर्म की शाखाएं, दो धर्म की धाराएं ऐसी हैं जो कहते हैं हमारे भगवान ने वट वृक्ष के नीचे 12 वर्ष तप किया और केवल ज्ञान प्राप्त किया और वो भगवान बन गए, है ना। दो धर्म शाखाएं ऐसी हैं जो कहते हैं कि हमारे भगवान ने वट वृक्ष के नीचे ध्यान किया, तपस्या की 12 वर्ष और फिर वो भगवान बन गए। यदि भगवान कोई जीव यदि भगवान बन सकता है तो कितने हिरण्यकशिपु ने कितने लाखों वर्ष तपस्या की, पूरा कीड़ा खा गए शरीर, वो तो भगवान नहीं बना, वो तो भगवान नहीं बना। कृष्ण ने जन्म लेते ही चतुर्भुज नारायण का रूप प्रकट किया और 3 जन्म की बातों का स्मरण करा दिया, तो उन्होंने अपने जन्म लेते ही भगवत्ता का प्रदर्शन किया। अरे जन्म छोड़िए, जैसे ही कृष्ण ने मां के गर्भ में प्रवेश किया, तो दशम स्कंद में हम लोगों ने पढ़ा ना, इसी 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 स्कंद में प्रथम खंड में कि गर्भस्थ स्तुति। श्रीमद् भागवत जो है ये अमृत के समान है, सारे वेद पुराण उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत। और वो श्रीमद् भागवत में भी जो 5 स्तुतियां हैं, जो 5 मुख्य स्तुतियां हैं, उनमें से एक है ये गर्भस्थ स्तुति। जो देवतागण जेल में आकर के देवकी के गर्भ की स्तुति करते हैं, तो उस समय हम लोग क्या वर्णन पढ़ते हैं, क्या वर्णन सुनते हैं कि देवकी के गर्भ में जैसे ही कृष्ण ने प्रवेश किया, उसके गर्भ से तेज प्रकाश पुंज निकलने लगा और सारी अंधकारमय काल कोटड़ी जो है उजागर हो गई, प्रकाशित हो गई दिव्य तेज प्रकाश पुंज से। दिव्य कोई वहां पर दिव्य तेज प्रकाश पुंज शब्द प्रयोग किए गए, यह नहीं कि कोई 1000-2000 वोल्ट का हेलोजन बल्ब चालू कर दिया, कुछ देव की वसुदेव ने कुछ बोला मैं राजा बनूंगा तुझे पैसा दूंगा, एक बल्ब तो लगा, ऐसा कुछ नहीं था। घोर अंधकार में ही काल कोठड़ी और उसमें जब श्री कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश किया तो तेज प्रकाश पुंज हो गए। तो भगवान को भगवान बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, कभी भी नहीं, वो बस जन्म लेते हैं और अपनी भगवत्ता प्रकाश करते हैं। परंतु हम जीव इतने बद्ध हैं, आबद्ध अवस्था में हैं, इतने मूर्ख हैं, इतने अज्ञानी हैं कि भगवान स्वयं भूतल पर धरातल पर अवतरित होकर के भी अपनी विभिन्न और सर्वाकर्षक लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, है ना, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये भगवान है। व्रजवासी भ्रमित हो गए, आधे लोग सोच रहे हैं होगा या नहीं। कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। कृष्ण कहते हैं मैं सभी के आगे प्रकट होता ही नहीं हूं, योग माया से आवृत रहता हूं। पर कृष्ण जब स्वयं अपनी इच्छा से जब लीलाओं को प्रकाशित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तब भी आबद्ध जीव समझ नहीं पाता है कि ये सचमुच कृष्ण है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। हमारे में वो बुद्धि नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है कि कृष्ण स्वयं आते हैं और दिखाते, देखो मैंने बचपन में 1-1.5 साल की उम्र में पेड़ गिरा दिया, इसमें क्या है, पुराने पेड़ थे। कन्हैया से पूछा, लल्ला तैने पेड़ कैसे गिराया, बोले बाबा मैंने तो कछू ना कियो, पुराने थे, थोड़ा सा झटको दियो गिर गयो। बाद में नंद बाबा ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया लल्ला ये पेड़ कैसे गिराया तैने, बोले बाबा मैंने तो कछू ना कियो, पुराना थो सो गिर गयो, कोई हवा का झोंको आए होगो गिर गयो पेड़। लेकिन नंद बाबा ने पूछा था, भैया कोई तेज हवा चली थी, आंधी आई थी, बोले कुछ नहीं हुआ था, योग माया समावृत। पर यहां पर जैसे बद्ध जीव के ऊपर में योग माया है और कृष्ण को देख नहीं पाते, कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, वो योग माया का प्रभाव ब्रज में या ब्रजवासियों पर नहीं है। क्योंकि आज स्वयं कृष्ण जो है सारे संसार के लिए परब्रह्म, परम ज्योति, परम धामम, परम ब्रह्म, परम पवित्र, ये जो सारे कन्हैया हैं, वो आज व्रज में वात्सल्य का आनंद लूटने आए हैं। वो व्रज में वो कछु मांगने आयो है, तो वो आनंद में विघ्न न पड़ जाए, आनंद में बाधा न हो जाए, इसलिए योग माया से कहा इन पे आवृत हो जाओ। नहीं तो योग माया का क्या साहस कि जहां कन्हैया बाल लीलाओं को प्रकट कर ले और योग माया किसी की मति भ्रमित कर ले, संभव ही नहीं हो सकता। परंतु यदि लोग जान जाएंगे कि परब्रह्म है, परमात्मा है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो कन्हैया को वात्सल्य रस का या साख्य रस का आनंद कैसे प्राप्त होगा, वे रसपान कैसे करेंगे? हालांकि वो तो रस का उद्गम स्थान है, रस ही उन्हीं से आता है, रसराज श्री कृष्ण है ना, कृष्ण का एक नाम है रसराज श्री कृष्ण। तो ब्रजवासियों पे ये कैसे माया का प्रभाव है, योग माया? नहीं नहीं, वो हमारे जैसी योग माया समावृत नहीं है, योग माया अनावृत नहीं है, ऐसे अनावृत नहीं है कृष्ण। कृष्ण आवृत है, परंतु निज रस पान के लिए उन्होंने योग माया से कहा इन ब्रजवासियों को असंजमस में डाल दो। तो कृष्ण की आज्ञा से, कृष्ण की इच्छा से कृष्ण की शक्ति कार्यान्वित होती है। तो इसलिए यहां पर कृष्ण को कुछ करना नहीं पड़ा। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, ये नहीं है कि हम कृष्ण ने कोई व्यायामशाला में गए होंगे, पहलवानी की और पर्वत उठाया, कृष्ण ने कुछ किया होगा और धेनु का सुर को ऐसे घुमा घुमा के ताड़ वृक्ष पे फेंक दिया। आप जितने भी ओलंपिक्स गेम देखो, कृष्ण ने सब किया। वो लोहे का बॉल फेंकने का था ना गेंद ओलंपिक्स में, एशियान गेम, ऐसे नहीं देखो। तो कृष्ण ने धेनु का सुर को ऐसे फेंका, और कृष्ण ने जितना दूर फेंका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तक किसने नहीं फेंका। कृष्ण ने जितना वेट लिफ्टिंग किया कृष्ण ने नहीं किया। कृष्ण गैया चराने भागते थे, दौड़ते थे गाय बछड़ों के पीछे, इतना रन कोई नहीं बना आज तक। कृष्ण ने जो कुछ भी किया, रासलीला किया किसी ने नहीं किया, माखन चोरी की कृष्ण ने, जितनी चोरियां की वो भी किसी ने नहीं किया, उतनी चोरी किसी ने नहीं की, या उस प्रकार की चोरी किसी ने नहीं की। कृष्ण ने जैसी डकैती डाली, कृष्ण डाकू भी हैं, डकैती नहीं, रुक्मणी हरण क्या है, भागवतम में लिखा है राक्षसी विवाह किया, हाँ, शिशुपाल और क्या क्या बड़े बड़े जरासंध और बड़े बड़े वीर पराक्रमी रथी महारथी अतिरथी सारे राजा अपनी सेनाओं के साथ थे, सभी को भय था कि वो कृष्ण आएगा जरूर और कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए सब युद्ध की तैयारी के साथ आए। और जैसे सियालों के बीच में से सिंह जैसे अपना हिस्सा लेके भागता है, और सिया कहां करते रहते हैं, ऐसे ही पकड़ो पकड़ो भागो दौड़ो, ले गया रुक्मणी को, ले गया कृष्ण खुलेआम। आजकल आतंकवादी किडनैपिंग करते पीछे से। कृष्ण खुलेआम किडनैपिंग करके ले गए, डकैती की उन्होंने, चोरियां की, स्पोर्ट्स खेले। तो वो उनको भगवत्ता प्रकाशित करने के लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और बहुत एक मजेदार बात है जिसमें बहुत ऐसे टेस्ट आता है, ऐसे वो क्या है कि देखिए क्या क्या इस लीला का दर्शन क्या है, ये जो लीला है इसके दर्शन क्या है कि कन्हैया खुद रस्सी से बंधा है, हा? और यमला अर्जुन वृक्ष रूपी नल कुबेर मणिग्रीव को उद्धार कर रहे, उसका मोक्ष कर रहे, खुद बंधा है और दूसरे को मोक्ष कर रहा है। क्या मजेदार बात है, कैसी अद्भुत लीला है। कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का चरित्र है, कई बार विरुद्ध धर्माश्रयी होता है। हमारे आचार्य चरण श्रीपाद वल्लभाचार्य इस बात पर बहुत बार व्याख्या करते हैं कि कृष्ण ने जो लीलाएं प्रकट की विरुद्ध धर्माश्रय, कृष्ण जो करते हैं, कृष्ण वेणुनाद करते हैं तो खलखल बहती नदियां स्तंभित हो जाती है, जड़ बन जाती है, और जो वृक्ष या पर्वत आदि जो जड़वत हैं, जो स्थिर हैं वो हिलने डुलने लगते हैं, और पत्थर जो है वो प्रवाहित होने लगता है पिघलते हुए। कृष्ण का चरित्र, कृष्ण की लीला ही ऐसी है, विरुद्ध धर्माश्रय, खुद बंधन में। अगर हम लोगों को कोई बांध दे, हाथ पैर ऐसे बांध दे और पानी में फेंक दे और कोई दूसरा डूब रहा है तो हम उसको बचा सकते हैं, हा? उसको कोई बचा सकते हैं? हम लोग बचा सकते हैं? बोले भैया जो खुद को नहीं तार सकता है, जो खुद को नहीं बचा सकता है, वो दूसरों को क्या बचाएगा? हम लोग बोलते हैं ना, वाक्य प्रयोग करते हैं ना कई बार कहीं ऐसे विशेष परिस्थितियों में। मगर कृष्ण देखिए खुद बंधे हैं ऐसे, और घुटने के बल चल के गए और यमला अर्जुन का उद्धार कर दिए, उनके लिए क्या बड़ी बात है, और उनका मोक्ष करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी इस उखल बंधन की लीला का फलश्रुति बताते हैं। किस किस कथा का फलश्रुति क्या है, श्रुति फल क्या है इस कथा का, कि जो कोई भी व्यक्ति इस उखल बंधन की लीला को जो सुनता है, श्रवण करता है, पठन पाठन करता है, उसका गान करता है, कीर्तन करता है, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। कृष्ण उखल बंधन की लीला, बंधन की लीला क्या है, कृष्ण बंधे गए और कार्य क्या किया, संसार को मुक्ति प्रदान करने का। ऐसे भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। जो बंधे हुए हो या गरुड़ पे बैठ के गजेंद्र को बचाएं, खुले हैं ना, उनके लिए कोई परिस्थिति बाधित नहीं है। गरुड़ को बचाना है अपना, सॉरी गजेंद्र को बचाना है, गरुड़ पे उड़ के गए, देखा गरुड़ की गति कम पड़ रही है, सुदर्शन छोड़ दिया, गरुड़ को बचा लिया। द्रौपदी की रक्षा करनी है, करोड़ों टन मीटर कपड़ा सप्लाई किया तुरंत, किसी भी मिल में ऑर्डर नहीं दिया कृष्ण ने, पैक करो कपड़ा, बांधो, लोड करो ट्रक में भेजो। ये जीव का स्थिति है। और कृष्ण ने वही कपड़ा की फैक्ट्री उत्पन्न कर दी, ऐसे कुछ आवाज बावाज भी नहीं आया, पोल्यूशन, नो इस पोल्यूशन, नो एयर पोल्यूशन, कुछ नहीं, सीधा कपड़ा आने लगा। अद्भुत कृष्ण का चरित्र, जो भी चरित्र हैं सारे के सारे अद्भुत, चाहे वो गजेंद्र को बचाना हो, चाहे वो द्रौपदी को बचाना हो, कृष्ण बालक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके कोई भी लीला अवतारों में देखिए, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी देखेंगे तो सांप को पकड़ के खेलते हैं, एकदम विषैला सांप। और भारत में इसे माना जाता है कि सबसे विषैले सांप जो हैं बंगाल आसाम की तरफ के होते हैं, बहुत विषैले नाग और सांप होते हैं, वो खेल रहे हैं, उनको क्या है। प्रभु श्री राम भी अपने अयोध्या में अपने भवन में है, दशरथ भवन में है, कौशल्या भवन, क्योंकि भवन जो होते थे, महल जो होते थे, वो रानियों के होते हैं, राजाओं के दरबार होते थे, राजा दरबार का मालिक, ऑफिस, और घर जो है रानियों के। तो हमने शुरू में कहा ना बालहट, छोटे से बालक हैं रामचंद्र, है ना, और अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चलना सीखे हैं, करीब करीब साल सवा साल के हैं, हा? और पैरों में नुपुर बांध के ठुमक ठुमक चल रहे हैं, है ना, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक ठुमक श्री रामचंद्र। ऐसे प्रभु चल रहे हैं और पूरी खा रहे हैं। कौआ आया, सोचने लगा ये क्या राम है, यही भगवान है, देखता हूं ये भगवान है या नहीं, वो उसके गए, चौंच मारी, पूरी छीन लिया और भागने लगा। तो प्रभु ने कहा अच्छा मेरी परीक्षा करता है, अभी बताता हूं। तो रो रहे हैं रामचंद्र जी ऐसे, और पूरी के लिए जैसे बच्चा रो रहा है, पर उसके पीछे ही दौड़ रहा है, और वो कौआ जो है वो यहां से तीनों लोकों में उड़ रहा है, और जब ही देखता है प्रभु पीछे ही है, बस थोड़े से पीछे। तो आप लोगों का वो स्पाइडरमैन, क्रिश, बैटमैन उड़ सकता है तीनों लोकों में, ओम भूर भुवस्व भूतल भू भू भुव स्व स्वर्गलोक, उड़ सकता है तीनों लोग आपका, क्रिश या बैटमैन या स्पाइडरमैन या जो भी हो, सुपरमैन। तो कृष्ण ने वो भी किया, राम ने वो भी किया, पहले ही सुपरमैन बन के दिखाया, सुपरमैन, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है सुपरमैन, इज अ सुपरमैन। बच्चों को सिखाना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छा किया जो लोग वो 3D एनिमेशन वगैरह बनाते हैं रामचरित्र पर, कृष्ण चरित्र पर, बहुत अच्छा है, धन्यवाद है उन लोगों को। ताकि हमारे बच्चे उन गंदे बैटमैन मतलब उल्लू दा पठा, पंजाबी में कहते उल्लू दा पठा, बैटमैन उल्लू यानी बैटमैन तो वो होता है ना चमगादड़, चमगादड़ चमगादड़ बैटमैन, जैसे सुपरमैन क्रिश। तो वो रामचंद्र जी उसके पीछे दौड़ रहे तीनों लोकों में, कौवा थक गया, अपनी पूरी योग शक्ति खत्म हो गई, तीनों लोकों में जाने के लिए योग शक्ति चाहिए, खत्म हो गई। वापस आया, भगवान से क्षमा मांगी, पूरी वापस ले लो। बोले कभी आएगा अभी? बोले नहीं, अब सारा जीवन शिव जी के साथ हिमालय में रहूंगा और केवल राम कथा गाऊंगा और कुछ नहीं। शिव जी बैठते और काग भूषणी राम कथा करते रहता है, दोनों का एक ही काम है। जब कोई शिव जी को बहुत डिस्टर्ब करते तब उठते हैं, कुछ काम करते हैं, किसी का वध करना या कुछ और करना, कुछ और करना नहीं, तो शिव जी का एक ही काम है, हिमालय में बैठते और राम कथा सुनते, काग भूषणी गाता है, शिव जी राम कथा सुनते हैं और कुछ काम नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो कृष्ण चरित्र हैं उनको श्रवण करते करते कृष्ण आकर के अपनी लीलाओं को, अपनी शक्तियों को, अपने ऐश्वर्यों को, अपने योगों को, अपने स्वरूप को दर्शन कराते हैं। और ये सब दर्शन करके, पठन पाठन करके हम लोगों का भी मोक्ष हो सकता है। हम चाहे कितने ही बहुबंधन में, कितने ही संसार में फंसे हैं, परंतु क्या चाहिए, उसका मूल्य क्या चाहिए, उसका एक मोल चुकाना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो मोल क्या है? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। हमें केवल श्रद्धा से, केवल श्रद्धा से इस कथाओं को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो क्या है? योग माया समावृत। कृष्ण अंदर ही नहीं जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा नहीं है तो कृष्ण के इस अद्भुत चरित्र को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कभी कभी मायावादी लोग जब गीता के ऊपर टीका लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, तो एक परम योगी या परम ऐतिहासिक पुरुष या परम शक्तिशाली पुरुष ऐसे लिखते हैं कृष्ण के लिए। प्रभुपाद जी बहुत बिगड़ते थे इस बात पर, नहीं लिखना चाहिए स्पष्ट रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, क्या दिक्कत है लिखने में। तो हम लोगों ने कृष्ण की मुक्तिकारी लीला, परम योगी, परम शक्तिशाली, व्रजवासियों का प्राणवल्लभ, ये एक कथा और सुनते हैं कि ये जिस दिन उखल से बांधा गया उसकी संध्या और रात्रि कैसे बीती कृष्ण की, कोई जानता है? नंद बाबा आए, इसका अगला श्लोक है कि नंद बाबा ने लकड़ी की उखल से रस्सियां खोली और दौड़ करके कन्हैया को गोद में ले लिया बाबा ने। और नंद बाबा जो हैं कृष्ण के सर को सूंघ रहे हैं। भागवत में वर्णन है कि पिता के द्वारा जब जन्मदिन पर या कभी कोई संतान के साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाए, बीमार हो जाए या गिर जाए या चोट आ जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो यदि अपने संतान को गोद में बिठाकर, दाहिनी जंगा पर बिठाकर, क्योंकि बाई जंगा जो है अपनी स्त्री के लिए है, दाहिनी जंगा पर बिठाकर यदि कोई पिता या माता अपने पुत्रों का, संतानों का यदि मस्तिष्क को सूंघे, भागवतम में उसका मंत्र भी है, तो उसका जो पीड़ा है वो दूर हो जाता है, उसके दुख सारे दूर हो जाते हैं, उसके कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य मिट जाता है, वो सद्भाग्यशाली, शक्तिशाली, बलशाली, ओजस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी हो जाता है। और इसीलिए सप्तम स्कंद में आप देखोगे तो हिरण्यकशिपु भी प्रह्लाद महाराज जब शंडामर्क के गुरुकुल से आए तो अपनी जंगा में, दाहिनी जंगा में बिठाकर प्रह्लाद का सर को सूंघते हैं, वर्णन भागवतम। तो नंद बाबा कन्हैया को सहला रहे, लल्ला तैने कहीं चोट तो नहीं? नहीं बाबा, मोको कहीं चोट नहीं आई। लल्ला के भयो? लल्ला क्यों तेरी मैया ने तुझे बांध दियो? बाबा मैंने तो कछु ना कियो, मैया ने मुंह को छोड़ के दूध लेवन को गई, बाबा मोसे बाबा मोसे एक भांड फूट गयो, थोड़ा नहीं कहा फूट गयो, झूठ तो नहीं बोले? कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी नहीं झूठ बोलते हैं, वो ऐसा सच बोलते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाए सच क्या है झूठ क्या है। बाबा मुंह से एक भांड फूट गयो दधी को, तो नंद बाबा को थोड़ा रोष आ गया, बोले दधी भांड फूट गयो, एक छोटो सो दधी भांड फूट गयो, और लाला तेने बांध दियो लाला मैया ने, मैया ने बहुत बुरो कियो लाला। बाबा बाबा मैं आज मैया के साथ ना बतियाऊंगा, मैं बतियाऊंगा नहीं बाबा, मैया ने मोकु बांध दियो ला। बाबा बाबा ने कहा कोई बात नहीं लल्ला, चलो हमसे बतियाना, हम लाला तेने मैं ले जाऊंगा। बाबा बाबा आज मैं मैया के हाथ से खाना भी ना खाऊंगा, बाबा मैया बहुत बुरी है, बाबा मैया ने मोकु बांध दियो, आज मैं मैया से बतियाऊंगा भी नहीं, रात्रि में मैया के साथ सोऊंगा भी नहीं। बाबा कोई बात नहीं लला, आज तू मेरे हाथों से खाना लाला, मैं तैने सुलाऊंगा लाला। बाबा भवन में भीतर गए, बाबा भीतर को गए, कन्हैया को गोद में बैठाकर बाबा कन्हैया को खिलावन को शुरू करे, पर बाबा को पतो ना है कन्हैया कैसे खाता है, कभी खिलाया नहीं ना, कृषि गौ रक्षा गौ पालन में व्यस्त है। अब मैया भीतर से भेज रही है गोपियन के साथ खाना भेज रही है, लल्ला को क्या भाव है, बाबा को क्या पता है लल्ला क्या खाता है, क्या अच्छा लगता है, कितना खाता है, क्या पहले देना चाहिए क्या बाद में परोसना चाहिए, बाबा को तो कछु पतो ना है। मैया भेज रही है, बाबा समझ गए नंद बाबा, कन्हैया को लाड़ प्यार से दुलार से, कोई बात नहीं कन्हैया, हम कल कल जाएंगे किसी बाबा के पास जाएंगे, तेरा भविष्य दिखाएंगे, बाबा तेरे कहीं चोट तो नहीं, नहीं बाबा मोगू कहीं चोट ना आई, कोई बात नहीं मैया के संग नहीं बतियाएगा बाबा, तू खा ले। उसको दुलार से प्यार से फुसला के पटाके कन्हैया को खिला रहे हैं, और फिर जब कन्हैया को खिलाया, कन्हैया की आरती की, श्रृंगार किया, आरती की, शयन किया, अब ये तो बालक है और बहुत ही हठी बालक है, ये तो कोई कम थोड़ी है, तो बाबा को तो पतो ही ना है भैया कि लाला सोवन कैसे जात है, कैसे लाला को सुलाया जाए। तो कहे कन्हैया मैया तो को कैसे सुलावत है, कहे बाबा मैया मो को रोज अलग अलग कहानियां बता के सुलाती है। बाबा बाबा तू ही कछु कहानी बता दे, व्रज में जब बहुत प्रेम होता है तो आप नहीं कहते, तू बोलते हैं है? बाबा तू ही कछु कुछ कथा कुछ कहानी बता दे बाबा। तो नंद बाबा ने विचार किया कि क्या कहानी बताऊं, तो उन्हें एक याद आया, बोले कन्हैया बहुत साल पहले की बात है, युगों युगों पहले की बात है, एक बहुत बड़ा भक्तराज हुआ, भक्तराज भक्त शिरोमणि, उसका नाम था प्रह्लाद, और सदैव नारायण का गुणगान करता था, नारायण नारायण हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे प्रह्लाद था, उसके पिता हिरण्यकशिपु थे, बहुत साल तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, किसी तरह नहीं मरेगा, न दिन में न रात में न दोपहर में न शाम को, न अंदर न भीतर न बाहर न ऊपर न नीचे, न जल में न थल में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न देवता से न दानव से, न गंधर्व से न किन्नर से, न यक्ष से न राक्षस से। परंतु लाला वो बड़ा पापी असुर था, वो अपने बेटे को बड़ा सताता था, बाबा तू तो कितनो अच्छो है ना बाबा, मेरो कितनो ध्यान रखे बाबा, हां कन्हैया तू तो मेरो प्राण है कन्हैया। तो बोले बाबा वो अपने लल्ला को प्यार नहीं करता था, बोले नहीं लल्ला वो विष्णु का नारायण का शत्रु था, और उनका लल्ला जो था प्रह्लाद वो तो विष्णु का भक्त था। बाबा ये विष्णु कौन होते हैं, कन्हैया ये परब्रह्म है, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, बाबा थोड़ा उपदेश कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, विष्णु कौन है, योग माया समावृत, उसी को कह रहे हैं विष्णु कौन है, नारायण कौन है, ठीक है लल्ला पाछे के भयो, लल्ला एक दिन ऐसो भयो कि अब हिरण्यकशिपु उपाय करने लगो कि इसको कैसे समाप्त, इसको खत्म कर दें, पहाड़ की चोटियों से फेंकवायो, हाथी के पैरों तले कुचलवायो, विषधर नाग में फेंकवायो, होलिका के साथ उसको बिठायो, और कहीं उपाय कियो, अंत में के भयो बाबा, बोले अंत में एक दिन बहुत ही क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु ने पूछा कि हे प्रह्लाद तेरो विष्णु कहाँ है, नारायण कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा इस खंभे में, इस खंभे में है। बाबा के भय बाद में बोले, उसने कहा कि मैं अपनी ऐसी गदा से प्रहार करके अभी इस खंभे को तोड़ देता हूं और समाप्त कर देता हूं तेरा विष्णु को। बाबा के भयो बाद में बोले, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और जोर से प्रहार किया और बहुत ही विकराल गर्जना हुई गगन भेदी और नरसिंह रूप प्रकट हो गए। मैं नरसिंह हूं, मैंने हिरण्यकशिपु का वध किया। कन्हैया उठ खड़ा हुआ बिस्तर में और क्रोध में भर गया, मैं नरसिंह हूं, मैंने हिरण्यकशिपु का वध किया, मैंने प्रहलाद की रक्षा की। बाबा चौंक गए, कोई भूत पिशाच तो नहीं पकड़ लिया उस यमला अर्जुन वृक्ष में, कोई भूत भूत लटकता होगा। अरे लल्ला के भयो, लल्ला के भयो, अरे भाई दौड़ो दौड़ो, अरे लल्ला, नहीं नहीं कछु नहीं। बाबा तुरंत शांत हो गए, बाबा को पता नहीं चलना चाहिए ना। कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ बोला उसने कभी नहीं, वो तो सच ही बोला। लेकिन बाबा को पता नहीं चलना चाहिए कि यही विष्णु है, यही नारायण है। कुछ देर पहले उपदेश किया था, नारायण कौन है, विष्णु कौन है। बाबा एक कहानी और सुनाओ, आज मोकुन नींद नहीं आ रही है बाबा। बाबा सोचने पड़ गए क्या सुनाओ इसको, कि यशोदा कितनी कहानी सुनाती है। लल्ला ने तो कुछ दो चार छह दस निवाले खाए थे, पर यशोदा के निवाले गए अंदर, यशोदा ने कुछ नहीं खाया था। क्योंकि आज जीवन में पहली बार कन्हैया मां यशोदा से रूठा है, ना उनके पास गया, ना उनकी गोद में गया, ना उनके हाथ से कोई अन्न का एक निवाला भी खाया, और ना ही रात्रि में वो सोने को गया। मैया न जाने कहां कहां कि कितनी कहानियां सुनाती होगी, कितनी लोरियां गाती होगी, और यशोदा यहां कन्हैया के विरह में छटपटा रही है, और उस विरह का, उस जो प्रेम तड़प है, वो कन्हैया को भी छू रही है। प्रेम दोनों ओर पलता है, उसी का नाम है प्रेम। प्रेम जो होता है ना, वो दोनों ओर होता है, एक पक्षी प्रेम नहीं होता, एक पक्षी केवल काम वासना होती है, प्रेम दोनों ओर होता है। और इसके लिए आजकल लोग कहते हैं ना, आई लव यू, इफ यू लव मी नॉट, मैं एसिड फेंकूंगा तेरे चेहरे पर। ऐसा नहीं, यशोदा मैया यहां रो रही है। कितने वर्षों की मिन्नत के बाद, कितने व्रत, कितने दान, कितने तपस्या, कितने हवन के बाद लल्ला भयो, और आज ऐसी मुंह से गलती हो गई कि आज कन्हैया मुंह से रूठ गयो। न जाने थोड़े से दधि भांड के लिए मैंने उसको आज उखल से बांध दियो। मैया विलाप कर रही है, पश्चाताप कर रही है, बिलख रही है, रो रही है, और उसका असर जो है कन्हैया को हो रहा है। कन्हैया को नींद नहीं आ रही, बाबा कितनी कहानियां सुनाए। बाबा ने कहा, कन्हैया मैया कितनी कहानियां सुनाती है रोज। बोले, बाबा मोकू क्या पता, जब तक मोके नींद ना जावे मैया कहानियां सुनात रहे, कहिए मैया कहानियां सुनात रहे। मैंने कभी गिनती थोड़ी ना की हुई बाबा, अब तू कहानी सुना, तूने सुलानो है मोकू तो तू कहानियां सुना। नंद बाबा फंस गए, बोले अब कैसी कितनी कहानियां सुना। कन्हैया हजारों लाखों वर्ष पहले की एक बात है, एक बहुत बड़े संत ऋषि मुनि हुए थे, उनके साथ में उनका नाम था विश्रवा मुनि। तो मई दानव ने कपट से अपनी अपनी बेटी का विवाह उससे करा दिया, और कपट से विवाह कराया विश्रवा मुनि के साथ। तो उनके चार संतान हुए, तीन पुत्र और एक पुत्री। उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था रावण, उससे छोटा था कुंभकर्ण, उससे छोटा था विभीषण, और बहन का नाम था सुपर्णखा। और फिर उस रावण ने क्या किया, बोले अवध कुमार के राम जो थे महाराज दशरथ के पुत्र, उनकी भारिया को हर ले गया, और वो राम राम बिलखते थे। बाबा ये राम कौन होते हैं। लल्ला सूर्य वंश के राजा हुए थे, सूर्यवंशी थे, अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा दशरथ के सत्य प्रतिज्ञा, सत्य आचरण, सत्य कर्म ऐसे राजा दशरथ जिनमें जिनके पूर्वज महाराज क्या बोलते हैं सत्यवान राजा हरिश्चंद्र के कुल के थे, तो उनकी कुछ सत्य कथाएं सत्य आचरण सत्य व्रत आदि का वर्णन किया। बाबा बाद में के भयो, बाद में वो रावण जब उनकी भार्या को ले गए हरने लगो तब जटायु को वध किया, राम किष्किंधा गए सुग्रीव से मित्रता की और फिर वानर और भालुओं की सेना लेकर रावण पे आक्रमण किया। पहले राम ने समझाया, दूत भेजा अंगद को, कह नहीं दूंगा तुम्हारी भार्या। और फिर राम रावण का युद्ध निश्चित हो गया। सवेरे हुई शंखना, काहे रावण मैं वध करूंगा अपने बाणों से। कन्हैया फिर खड़े हो गए बिस्तर में, मैं रावण का वध करूंगा, मैं मेरा विभीषण भक्त है, मैं कुंभकर्ण का वध करूंगा। बाबा फिर डर गए, इसको क्या भूत पकड़ लिया, जरूर हो यमलार्जुन वृक्ष में कोई रहा होगा प्रेतात्मा। अरे लल्ला के भयो, बाबा कछु ना भयो कछु ना भयो, बाबा तू कहानी सुना। नंद बाबा ने सोचा ये क्या मुसीबत है, आधी रात हो गई है सो ही नहीं रहा, सोएगा कैसे, लल्ला के हृदय में एक तड़प है मां यशोदा से मिलने की। मोते कह दियो कि मैं मैया से बात ना करूंगा, मोते कह दियो अपनी बाणी से कि मैं मैया के हाथ से खाऊंगा नहीं, मोते कह दियो कि मैं मैया से आज के बाद कभी ना बात करूंगा, परंतु हृदय तड़प रहा है कन्हैया का। तो उसको नींद कैसे आए, कितनी कहानियां सुनाए, बाबा थक गए। बोले कन्हैया अब मोकू नींद आए हैं, सुबह जल्दी सवेरे जागनो है मोकू, गैयन की सेवा करनी है। ठीक है बाबा मैं भी सो जाता हूं तू भी सो जा। किसी तरह नंद बाबा ने सहला के दुलार से लोरी गाई, कुछ किया उपाय किया, कन्हैया सो गया। भोर भई चार बजे बाबा तो चले गए अपनी गौ सेवा के लिए। माँ यशोदा से कह के गए, रात गई सो बात गई, तू जा जाके लल्ला लल्ला को जगा। तू यशोदा मैया के हृदय में दो भाव एक साथ चल रहे हैं, एक तो कन्हैया से मिलन का, युगा इतम निमेषेणा चक्षुषा प्रावृषा इतम शून्या इतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, एक तो कृष्ण विरह से मिलन होने जा रहा है और दूसरा भय है कि यदि यदि आज भी कन्हैया ने बात नहीं की या मेरी ओर देखा नहीं तो यशोदा ने मन ही मन सोच लिया कि आज प्राण को धारण नहीं करना है फिर, और इसलिए यशोदा के मन में भय और हर्ष दोनों साथ में है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी भी ऐसे ऐसे भक्तों के गुणों का, भक्तों के लक्षणों का, भक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। स्तंभन जड़वत मूर्छा, नयनम गलद अश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। यशोदा मैया सोच रही कि क्या कन्हैया मुझसे बात करेगा, कन्हैया मेरे हाथ से खाएगा, क्योंकि मां को चिंता रहती है कि जब तक वो नहीं खिलाए बच्चा भरपेट खा ही नहीं सकता है। इसलिए बच्चे की जब शादी होती है ना तो थोड़े दिनों के बाद सास बहू में लड़ाई होती है। मां सोचती है मैंने इतने सालों से इस तरह से खिलाया, ये क्या खिलाएगी कल की आई छोरी। मां को पता है मेरे मेरे लाल को क्या भाता है और क्या नहीं भाता है, बाबा को क्या पता है। तो मैया को तो यही था कि कन्हैया कल को भूखो है, भले ही वो मुंह से रुस गयो है पर वो कल को भूखो है। तो मैया ने तो उससे भी पहले सवेरे से कितनी न जाने व्यंजन तैयार करके रखे थे कि आज कन्हैया मोकू देखते ही कहेगा मैया बड़ी भूख लगी है, मैया मोकू ये खानो है, मोकू वो खानो है, मैया मोकू ये चाहिए, मोकू वो चाहिए। तो कन्हैया जो जो मांग सकता है, जो जो सोच सकता है, वो सारी व्यंजन बना के रख दिया मां यशोदा ने। पर फिर भी एक भय है कि कल से मैंने जो उखल के साथ बांधा था वो बंधन का स्मरण यदि आज भी होगा तो वो शायद मुझसे बात करेगा या नहीं, तो भय भी है। जैसे हम लोग जब गुरु महाराज यहां आते हैं तो डर भी लगता है ना कि कुछ सवाल पूछेंगे, आपकी माला ठीक से हो रही है या ग्रंथ पढ़ रहे हैं या नहीं, या सेवा ठीक से हो रही है, तो एक एक भय भी होता है और एक खुशी भी होती है, एक उमंग होता है, एक आनंद होता है कि गुरुदेव आ रहे हैं, उनके चरण स्पर्श करने मिलेंगे, उनका उचित प्रसाद मिलेगा, उनका दर्शन मिलेंगे, उनकी वाणी श्रवण करने मिलेगी, है ना। एक भय भी होता है, एक आनंद भी होता है। माँ यशोदा को कुछ इसी प्रकार से कुछ भय भी है और कुछ उत्साह भी है कि कन्हैया कन्हैया को क्या चाहिए, सारा उत्साह है। और कन्हैया को बाबा तो चले गए अपनी गौशाला में, और माँ यशोदा जो है वो कन्हैया को जगाने का प्रयास कर रही है थोड़े भय के साथ। हमारे गुजरात के जूनागढ़ के नरसी मेहता एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं कन्हैया को जगाने का, गुजराती में, शायद आप लोग समझ जाओगे, बहुत सरल है। और बचपन से मैं वो सुनते हैं, हमारे स्कूल में भी आता था। आजकल के जैसा बकवास नहीं कि एक अंडा दीवार पे बैठा था बैठा था बैठा था, एक अंडा दीवार पे बैठा था, 12 लाइन की कविता में 8 लाइन वही है कि एक अंडा बैठा था, हम्पटी डम्पटी सिट ऑन द वॉल, फिर बीच में दो ही लाइन आती है कि राजा का सैनी आया और उसके नीचे कुचल गया, बस यही दो लाइन आती है, भूल गया हमें वो लाइन, 8 लाइन यही है हम्पटी डम्पटी सीट ऑन द वॉल, ऐसे बकवास कविता है। लेकिन हमारे जूनागढ़ के नरसिंह मेहता, क्योंकि भक्त जो देखते हैं वही वो लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में बताते हैं ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, इस लोचन में जिन्होंने प्रेम भक्ति का अंजन किया है, जिनकी शलाका जो है भक्ति रूपी है, कृष्ण भक्ति रूपी शलाका है। शलाका जानते हैं, जीव दिया नेत्र प्रभा कभी लगाया है, कांच की शलाका आती है लेकिन पहले के समय में सोने या चांदी की शलाका आती थी, हमारे पास है, हमारी माता लगाती थी चांदी की शलाका से आंखों में अंजन। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, और वो आज अंजन क्या है, काजल क्या है, वो कृष्ण प्रेम। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, और जब जब अंजन करते तो आंख क्या करते, ऐसे खुली थोड़ी, बंद बंद करना पड़ता है ना, डर लगता है। तो वो भक्त का स्वभाव क्या है, जिन्होंने प्रेम भक्ति का, कृष्ण प्रेम का जिन्होंने अंजन लगाया है, काजल लगाया है, तो बंद आंख से दर्शन कहां करते हैं, हृदय में। संत सदैव हृदयेषु, संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती, विलोकयंती का अर्थ होता है देखना, क्या देखते हैं, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य, चिंतन से परे, ज्ञान से परे, बुद्धि से परे, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसका उदाहरण क्या है, प्रमाण क्या है, तो जब भी कोई भक्त गोवर्धन में, पहले श्रीनाथजी गोवर्धन में थे, तो जब भी कोई भक्त श्रीनाथजी के दर्शन करके आते थे गोपाल के, तो सूरदास जो थे वो वहां नीचे सीढ़ियों पे खड़े रहते थे गोवर्धन की, और कुछ कुछ जो श्रृंगार के दर्शन हैं उसके पद बना बना करके गाते थे। तो कुछ वैष्णवों को थोड़ा द्वेष हो गया और उन्होंने टेंपल प्रेसिडेंट कृष्णदास से शिकायत की, ये सूरदास पाखंडी हैं, नीचे आने जाने वाले वैष्णवों से पूछ लेता होगा और फिर पद बना के भजन गा के अपनी प्रशंसा वाहवाही लूटता है। और ये बात गई गोसाई जी के पास, विठलेश गोसाई जी के पास, कि सूरदास ऐसे करते हैं, ढोंगी है, पाखंडी है। तो विठलेश गोसाई जी ने भीतरियाओं से पुजारियों को आदेश दिया आज कैसे श्रृंगार करना है। तो उन्होंने क्या किया, श्रीनाथ जी को केवल पुष्पों का श्रृंगार किया, केवल पुष्प चढ़ाए, और इस तरह से माला आदि पहनाए, कोई वस्त्र नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। और जब पट खुला, श्रृंगार दर्शन, आरती का दर्शन खुला, और सब दर्शक वाह 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 करके, क्या फूलों का श्रृंगार है, दर्शन करते हैं, सब बखान कर रहे हैं, तब सूरदास जी ने पद गाया कि आज तो भयो, आज तो बड़ो अचरज भयो, ठाकुर स्वयं नंगम नंगो ठाड़ो है। ठाकुर जो है आज नंगम नंगो ठाड़ो है, आज तो बड़ो विचित्र दर्शन भयो है, कुछ पहना ही नहीं है, लंगोटी भी नहीं, वस्त्र भी नहीं, श्रृंगार भी नहीं। तो संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो मां यशोदा ने कुछ पद गाया होगा, कुछ भजन कोई ग्रंथ में होगा, पर हम लोग थोड़ा सा नरसी मेहता का पद जो है उसका आनंद लेते हैं। क्या गाते हैं नरसी मेहता? जागने जादवा श्री कृष्ण गोवालिया तुझ विनात धैन मां कौन जाशे हे लाला जागने जादवा। गुजराती लोग किसे गा सकते हैं? श्री कृष्ण गोवालिया तुझ विनात धैन मां, धेनु का अर्थ होता है जहां गैया चराते गोधन, कौन जाशे प्रण सोने साईठ गोवाल टोले वर्या वड़ोते गोवालियो कौन थाशे लाला जागने जादवा। श्री कृष्ण गोवालिया तुझ विनात धैन मां कौन जाशे दही थरा दही तना घी तना घेबरा कढ़िए दूध ते कौन पीशे लाला जागने जादवा। श्री कृष्ण गोवालिया तुझ विनात धैन मां कौन जाशे। स्कूल में बच्चे नहीं उठते तो क्या कहती है माँ? क्या कहती है? चॉकलेट दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी, उठ जा, बोलती है कि नहीं? तो माँ यशोदा क्या कहती है? दही थरा दही तना घी तना घेबरा कढ़िए दूध ते कौन पीशे लाला जागने जादवा। श्री कृष्ण कोई ऐसा ना सोचे दस बज गया अभी ये नहीं गाना चाहिए ऐसा नहीं। यमुना ने तीरे गौधेन चरावता मधुरिषी मोरली कौन वाशे लाला जागने। गायों को चराते मधि मुरली का गान कौन करेगा? गाय यहां वहां दूर चली जाएगी तो कन्हैया मुरली बजा के अपने पास बुला लेगा। वैसे कन्हैया जब गोधन में जाते हैं गैया दूर जाती ही नहीं है। गाय जाती है, कन्हैया जाते हैं तो अपने आप जो भू देवी हैं, जो पृथ्वी है धरती मां, वो अपने आप घास उगाने लगती है, हरा भरा घास, और गाय खा के ढमढोल। अभी देखिए सब सूखड़ी है, ऐसे हड्डियां दिखती है और वहां गाय खा के ढमढोल ऐसे घास खाती है। फिर कन्हैया को देखते हैं, अम्बा कहीं लल्ला दूर तो नहीं गया, कहां है? पेड़ों की डाली पर कहीं जमुना में कूदा तो नहीं है? अम्बा गाय देखती है, कहां गई मेरा वाछरू, कहां गया मेरा वत्स, कहां गया? फिर देखती है तो घास जितना खाया था वो फिर उग गया। ये सब कथाएं गोपाल चंपू उज्ज्वल नीलामणि, हाँ ये सब ग्रंथों में ये सब कथाएं हैं। फिर गो घास आ गया, फिर गाय खाती है। फिर तो कहीं कोई गाय दूर चली गई तो कन्हैया मुरली बजा के बुला लेते, मैया तू कहां चली जा रही है? तो यमुना ने तीरे गौधेन चरावता मधुरिषि मोरली कौन वाशे लाला जागने जादवा। श्री कृष्ण गोवाड़िया गाउन तम तो गुजराती छो, शर्मा नु शू, शर्मा ही कर्मा है, हरिभजन तो गावा नु बिंदास बेधड़क। हरि तारो हाथियो काली नागे नाथियो भूमि नो भारते कौन से शे लाला जागने जादवा। श्री कृष्ण गोवाड़िया तुझ विनात धैन मां कौन जाशे मैं ता नरसीनो स्वामी शमलियो बूढ़ता बावड़ी कौन जाशे। हे लाला हूं तो भवसागर में डूबी रहो छु, हे मारा स्वामी, हे मारा नाथ, हे मारा प्राणधन, मारी बावड़ी कौन जालशे? गजेंद्र नी बावड़ी जाली, हे मारी बावड़ी जालजे मारा नाथ मारा प्राण वल्लभ। मैं ता नरसीनो स्वामी शमलियो बूढ़ता बावड़ी कौन जाल से लला जागने जादवा। श्री कृष्ण गोवारिया तुज विनाते धैनु माँ कौन जाशे। माताएं सोचती है गाना चाहिए, प्रभु जी सोचते क्या पता ये इस कौन में है तो गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए, या हम गा पाएंगे या नहीं। कृष्ण भजन है चाहे जिस भाषा में गाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बंगाली गाएगा वही भक्त है, जो बंगाली नहीं जानता है जो बंगाली नहीं गा सकते। गाओ वो कृष्ण भजन, वो गाओ जो आप उस भजन में डूब सको, जो भजन में लीन हो सको, वो भजन गाओ। मुझे क्षमा करें वैष्णवगण, पर कभी कभी मैं देखता हूं वैष्णव भक्तगण कभी कभी इस तरह से बंगाली भजन गाते हैं, वो केवल ये काम इस कौन में है, हम गौड़ीय वैष्णव हैं, पर उसे जमे या ना जमे वो गाना चाहिए बस। ठीक है, वो उत्सव है, वो तिथि है, वो पर्व है, आप गाइए। लेकिन कहीं उत्सव है और ऐसे नहीं गाना चाहिए, एका काले कोथा गैला वैष्णव ठाकुरा, ऐसे नहीं गाना चाहिए। गाए वो करे वो जिसमें आप कृष्ण भक्ति में लीन हो जाओ, डूब हो जाओ, चाहे आपकी गुजराती में गाओ, मराठी में गाओ, बंगाली में गाओ, पंजाबी में गाओ, कृष्ण को पुकारिए बस। महाप्रभु ने कहा गृह ठाको बने ठाको सदा हरी प्रेमे डाको। एक बार मीराबाई का भजन में बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा था, लोगों को मीराबाई की तरह गाना नहीं आता था, तो किसी ने लिख दिया बोर्ड पे, बोले बोले कैसे टोके कैसे, तो किसी भक्त ने बोर्ड पे लिख दिया चूने से, दूसरे दिन सुबह सुबह ताकि शाम को भजन हो, तो उन्होंने लिख दिया ताल से गाओ। तो जब भजन शुरू हुआ तो आज बहुत सारे भक्त लोग गा नहीं रहे, मीरा को मजा नहीं आई, बोले ताल से गाओ। मतलब मीरा सोचने लगे आज सब लोग क्यों नहीं गा रहे, सुर बेसुर कुछ गा क्यों नहीं रहे। तो किसी ने कहा वो देखो इसलिए बहुत सारे चुप हैं। तो मीरा ने पढ़ा ताल से गाओ, जिनको ताल नहीं आता था वो क्या करें। तो मीरा ने कहा वो ताल शब्द हटाओ और फिर चुने से लिखवाया प्रेम से गाओ, वहां ताल के जगह प्रेम लिख दिया प्रेम से गाओ। कोई भी अधिकृत आचार्य का वैष्णव भजन या पद किसी संप्रदाय की सीमाओं में बाधित नहीं होता, पर वो ये होता है कि आचार्य का, आजकल के जो गंदे सिंगर लोग गाते हैं, कामी भोगी विलासी जो सिंगर लोग जो गाते हैं वो मत गाइए, पर यदि वो पद सूरदास का है या नरसिंह मेहता का या मीराबाई का है तो आप आपके तरीके से गाओ या उसके तरीके से भी गाओ। यदि पद किसी अधिकृत आचार्य का है, आचार्य जो वैष्णव आचार्य भक्तगण हैं वो किसी संप्रदाय की सीमाओं से बाधित नहीं होते कि हमारा संप्रदाय का नहीं, ये तुम्हारा संप्रदाय का, ये सब नहीं। तो माँ यशोदा ने कन्हैया को जगाने का प्रयास किया, रात गई सो बात गई, तो माँ यशोदा ने कुछ पद गाया होगा, ये पद तो नरसिंह मेहता ने 400 साल पहले बना, माँ यशोदा ने तो कोई और पद गाया होगा, कभी ध्यान में पढ़ने में आएगा तो दोबारा कभी वो गाएंगे, है ना। तो हम तो अपने लल्ला को रोज ऐसे ही जगाते हैं, हमारे कृष्ण बलराम है छोटे से दो गोपाल, उनको यही गा के उठाते हैं बड़े प्यार से, हमारे पास कोई जल्दी नहीं है, टाइम की पाबंदी नहीं है, दो मिनट में होना चाहिए, इतने बजे मंगल आरती, लाला जगेगा, क्योंकि हमारा लल्ला जो है भैया नंद भवन को लाल है, हमारो लल्ला ब्रजवासी लल्ला है, हमारो लल्ला कृष्ण भगवान ना है, हमारो जो लल्ला है कृष्ण बलराम वो भगवान ना है, हमारो जो लल्ला है वो नंद बाबा को जायो है, माँ यशोदा को लालो है। प्यार से जगाना चाहिए, अपने अपने घर में जो भी ठाकुर जी है, चाहे किसी के पास गौरनीता या जगन्नाथ भी हो अब जगा सकते हो, वही जगन्नाथ हा? से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ है ना, बोलिए जोर से बोलिए ना, डरते क्यों है, से ही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ आप जगा सकते हो, जागने जादवा। तो इसलिए हाँ तो माँ यशोदा ने कन्हैया को जगाया और कन्हैया भी क्या हुआ, रात गई सो बात गई, और कन्हैया भी तो तड़पता था ना, कन्हैया ने भी सोचा कि माँ यशोदा से एक शाम और एक रात, आठ प्रहर में से चार प्रहर माँ यशोदा के विरह में बिताया है, तो कन्हैया भी तड़पा है, कन्हैया भी रात भर सोया नहीं, माँ यशोदा सहला के दुलार से प्यार से कुछ गा करके कन्हैया को जगा रही है, और कन्हैया ने जब ऐसे आंखें खोली, मैया आंखें खोल दी ऐसा मैया, और यशोदा के जो धैर्य के बांध थे टूट गए, मेरो लल्ला मेरो लल्ला मेरो लल्ला करके गोद से लगाया, चूमने लगी, सहलाने लगी, सर में बाल में सब जगह हाथ फेरने लगी और अश्रुओं की धारा बहने लगी, मेरो लाल, और छाती से जोर से दबा दिया, मेरो लल्ला मेरो लल्ला मेरो जायो मेरो जायो। माँ यशोदा ने इतना प्यार किया, चूमने लगी, मुहुष चुम्बितम बिंब रखता धर्म में मनस्या विरासा मलम लक्षणाभ, है ना, अपने लल्ला को चूम चूम के लाल कर दिया। और जैसे ही कन्हैया ने कहा कि मेरो लल्ला, और यशोदा ने जैसे ही उसको आलिंगन किया और कस लिया, यशोदा के स्तन से दूध की धाराएं फवारा बन के उड़ने लगी और सारा कन्हैया का दुग्धाभिषेक हो गया। उठते ही बोल से गिरिराज महाराज की, जैसे गिरिराज में दुग्धाभिषेक होता है वैसे कन्हैया का, उठते ही मैया बोलते ही आंख खोलते ही कन्हैया का दुग्धाभिषेक हो गया और सारा बिस्तर वस्त्र सब दूध 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 हो गया। रात गई सुबह गई, सब ब्रजवासी भूल गए कि कल क्या हुआ था, और कन्हैया भी हिचकियां लेकर मैया को लिपट गया, ना मैया कन्हैया को छोड़ रही है ना कहीं कन्हैया मैया को, दोनों रो रहे हैं। और फिर कन्हैया की दिनचर्या शुरू दूसरे दिन का, ऐसे ऐसे कन्हैया की जो सुखदेव गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति ये कुखल बंधन की लीला को सुनता है, श्रवण करता है, पठन पाठन करता है या कीर्तन करता है, उसका मोक्ष हो जाता है। तो हमने क्या दर्शन किए, शक्तिशाली कृष्णा, ऐश्वर्यवान कृष्णा, योगेश्वर कृष्णा और ब्रजेश्वर कृष्णा, है ना, ब्रजेश ब्रजेश कृष्ण का भी हमने दर्शन श्रवण तथा कीर्तन करने का प्रयास किया सुखदेव गोस्वामी के वचनानुसार। यदि हम सब श्रद्धा से ये करते हैं तो हमारा मोक्ष होता है। और इसीलिए कहते हैं साथ साथ गाइए दो मिनट और फिर अंत, बालम मुकुंदम बाल करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम् मुकुंदम् मनसा स्मरामि बालम् मुकुंदम् मनसा स्मरामि। बालम् मुकुंदम् मुक्ति मुक्ति प्रदाता मुकुंद, कन्हैया चाहे बालक अवस्था में हो, पौगड़ अवस्था में हो, शिशु अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, युवा द्वारिकाधीश अवस्था में हो, कन्हैया सभी अवस्था में मुक्ति दाता है, कृष्ण सभी अवस्था में, राम सभी अवस्था में मुक्ति दाता है। इसलिए कहा बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि जिहवेति भस्मामृतमेतदेव बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम मनसा। वरम देवम न मोक्षम वधिम वा न चान्यम ऋणेहम वरेषादपिहा इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तम किम अन्ये। वही श्याम सुंदर कमल नयन वाले स्निग्ध गुंघराले केश वाले जो बाल कन्हैया का, जो बाल गोपाल का स्वरूप है, हे प्रभु वही सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहे, उसी का स्मरण रहे, अन्य वरदानों से मेरा क्या प्रयोजन। हम लोग गाते हैं ना कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम में, तो इस प्रकार से ये दामोदर लीला आपके अगले कल के श्लोक में संपन्न हो जाएगी और फिर गोपियों के साथ की लीलाओं का उजागर होगा, अन्य सारे वैष्णवगण आपको सुंदर कथा श्रवण कराएंगे। हम सब ये कथा श्रवण करके अपने कन्हैया की कुछ स्तुति करें, कुछ सेवा करें और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई दोष त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा कृपा करके। कोई प्रश्न ले सकते हैं या बस खत्म टाइम? कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो फिर वांछा कल्पतरु। दामोदर बंधन की लीला की शाम और रात्रि का वर्णन मैंने गोकुल में जहां उखल है वहीं पर 2006 में सुना था। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं दीनबंधु प्रभु वृंदावन में, 2006 में उन्होंने वही उखल के पास ये सारी कथा सुनाई थी। नहीं तो कोई कहेगा जन्माष्टमी दास ने पता नहीं कहाँ से गप्पे लगाए। तो मैंने एक वैष्णव से ये कथा श्रवण किया है, दीन बंधु प्रभु, जिनको ब्रजवासी लोग ब्रजवासी कहते हैं। दीन बंधु प्रभु को अभी अमेरिकन कोई नहीं मानता, सारे ब्रज में विख्यात है। दीन बंधु प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनको सारे ब्रजवासी ब्रजवासी ही मानते हैं। तो उन्होंने ये कथा ब्रज भाषा में सुनाई, तो मैंने प्रयास किया कि ब्रज भाषा में ही, और मैं प्रयास करता हूं कि मैं ब्रज भाषा सीखूं, बोलूं, सुनूं। वो गालियां बोलते तो भी मुझे अच्छा लगता है भाई, जिनके पास जाना है उस देश की भाषा तो सीखनी पड़ेगी। हरे कृष्ण। तो सभी वैष्णव के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर हरि।